آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ۔
کلول مکھرجی کی کہانی منتظر۔ یہ بیگ، شکریہ۔ کیا آپ اس طرف؟ نہیں، وہ کیا ہے نا کہ میں اس طرف بھی بیٹھ سکتی ہوں، مگر اس طرف سے پلیٹ فارم کے اس پار کی کرسیاں بھی دکھائی دے جاتی ہیں۔ کافی بیگ ہیں آپ کے پاس، لگتا ہے شہر چھوڑ کر ہی جا رہے ہیں۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا نہیں، میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، میں کہیں نہیں جانے والی۔ ضروری تھوڑے ہی ہے کہ جب بھی آپ اسٹیشن جاؤ تو کہیں جاؤ، جانے والوں کو دیکھنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں ویسے؟ اچھا، اس لائن میں ہی درگا پور اسٹیشن آتا ہے نا، وہیں جہاں اسٹیل پلانٹ ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ وہ دیکھ رہے ہیں میری ناک کی سیدھ میں وہ سفید ٹی شرٹ والا اور نیلی پینٹ والا لڑکا؟ وہ وہیں نوکری کرنے جاتا ہے، ابھی 5 سال پہلے ہی تو نوکری لگی ہے۔ روز یہیں سے اسی وقت اس پلیٹ فارم سے ٹرین پکڑتا ہے۔ ارے ہنس رہے ہیں، میں مذاق تھوڑے ہی کر رہی ہوں، میں انہیں روز دیکھتی ہوں۔ صرف انہیں ہی نہیں، ان کے جیسے ہزاروں جو یہاں سے جاتے ہیں اور پھر شام کو واپس لوٹ آتے ہیں۔ کیا؟ نہیں، 5 میں 10 اور جوڑیے، میں یہاں پچھلے 15 سال سے آتی ہوں، یہیں بیٹھی لوگوں کو دیکھتی ہوں، اور شام 5:30 بجے جب میرا لڑکا اسکول ٹیوشن سے گھر کو آتا ہے تو گھر چلی جاتی ہوں۔ اچھا ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی، اس لڑکے کو میں پچھلے 5 نہیں 8 سال سے دیکھ رہی ہوں۔ وہ لڑکی دیکھ رہے ہیں، پنک سوٹ والی، وہ مہیلا ڈبے والی جگہ میں جو کھڑی ہے؟ ہاں وہ۔ وہ پہلے اس کے پاس اس کے ساتھ کھڑی ہوا کرتی تھی، دونوں پریمی پریمیکا ایک ساتھ کالج جایا کرتے تھے ایک ہی ڈبے میں، اور ساتھ ہی آیا کرتے تھے۔ جب سے لڑکے کی فیکٹری میں اور لڑکی کی اسکول میں نوکری لگی ہے، دونوں کی ٹرینیں الگ ہو گئی ہیں۔ اب دیکھیے، دونوں ایک ہی پلیٹ فارم میں ہو کر بھی الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد تو پھر بھی ایک ساتھ آتے تھے، کچھ دیر آپس میں بتیاتے تھے اور اپنے راستے چلے جاتے تھے، مگر دھیرے دھیرے اب دونوں اپنے اپنے وقت آتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ کیا کہا آپ نے، عشق مکمل ہو گیا ہے؟ دیکھیے میں تو مانتی ہوں اگر عشق مکمل ہو گیا تو وہ عشق ہی نہیں۔ اب ان ریل کی پٹریوں کو ہی دیکھ لیجئے، کتنی ہی ٹرینیں ان پر سے ہو کر گزرتی ہیں، کتنے ہی لوگ ان پر روز سوار ہوتے ہیں، کیا یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں؟ ساتھ چلتی جاتی ہیں بنا رکے بنا تھکے اننت دوری تک۔ پریم بھی تو کچھ ان پٹریوں جیسا ہی ہے، تو پھر مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے دیکھو، میں نے خام خواہ اپنی بکواس میں آپ کو بور کر دیا، چلیے اب آپ کچھ بتائیے۔ آپ کی شادی ہو گئی؟ اوہ ڈیورس، معاف کیجیے گا، مجھے پتا نہیں تھا۔ ویسے اچھا ہے آپ نے وقت رہتے اپنے ساتھی کو جان تو لیا، ورنہ لوگ تو ایک اجنبی ساتھی کے ساتھ رہ کر بوڑھے ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے آدھے حصے کو ڈھونڈنے کی طلب تک نہیں لگتی۔ تو کیا آپ اب شہر، نوکری، گھر سب چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں؟ ویسے چلے جانا ہی اچھا ہے، زندگی میں اگر صحیح وقت پر صحیح گاڑی پکڑ لی تو جیسے تیسے منزل تک آپ پہنچ ہی جاتے ہیں، ورنہ اسٹیشن پر بھٹکنے والے لوگ کم تھوڑے ہی ہیں۔ ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک کا سفر آسان ہوتا ہے؟ بس ٹکٹ کٹواؤ، بیگ لو اور نکل جاؤ۔ مگر کیا وہ پرانا اسٹیشن، اس کی یادیں پیچھے چھوڑی جا سکتی ہیں؟ آپ گھبرائیے مت، میں تو کچھ بھی بولتی رہتی ہوں۔ وہ دیکھیے، وہ 3 نمبر پلیٹ فارم پر جو گاڑی آئی ہے، وہ پرانے ڈبوں والی، دیکھ رہے ہیں، وہ پہلے اس پلیٹ فارم پر آتی تھی، نہ جانے انہوں نے اس کا پلیٹ فارم کیوں بدل دیا۔ اب بتائیے، کوئی ایک نمبر بتا کر آئے اور گاڑی 3 نمبر پر جائے تو لوگ اتنی بھیڑ میں ایک دوسرے کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ آپ کو پتہ ہے یہ ٹرین اس لائن کی سب سے پرانی ٹرین ہے، قریب 25 سال پرانی۔ ارے سچ میں، میں نے ہی اس پر 20 سال پہلے سفر کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اور وہ دونوں اسی ٹرین سے کالج جایا کرتے تھے، کیا آپ مانیں گے اس نے مجھے اسی پلیٹ فارم پر پرپوز کیا تھا۔ اس وقت وہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر بھاشن بازی کرنے والی کسی کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس نے مجھے میری ساہتیہ کی کتاب میں ایک گلاب چھپا کر اپنے شبد لکھے تھے۔ پھر کیا، پھر ان کی درگا پور اسٹیل پلانٹ میں نوکری لگ گئی اور ہم نے شادی کر لی۔ لو میرج میں جیسے لڑائیاں ہوتی ہیں وہ سب تو ہوئی ہی تھیں، مگر جیسے تیسے بس ہو گئی۔ ایسے مت مسکرائیے، مجھے شرم آ رہی ہے، آپ ادھر مت دیکھیے، ادھر دیکھیے آپ۔ ہاں تو شادی ہو گئی اور وہ کام پر جانے لگے اور میں گھر پر اکیلی ہو گئی۔ میں نے وقت نکالنے کے لیے اسکول میں ساہتیہ پڑھانا شروع کر دیا، پھر ہم ساتھ ساتھ ایک ہی ٹرین میں صبح کو نکلتے، میرا اسٹیشن پہلے آتا، میں اترتی، پھر وہ اپنے اسٹیشن چلے جاتے۔ और छुट्टी के वक्त मैं यहाँ पहले आती और उनका इंतज़ार करती, फिर वो 6 बजे तक आते और फिर हम घर जाते। बड़े सुख प्रेम के साथ ज़िंदगी बीत रही थी। इस बीच में प्रेग्नेंट भी हो गई। फिर मुझे ढंग से याद है 31 जनवरी 1998 की शाम, हमेशा की तरह मैं स्कूल से लौटकर स्टेशन पर उनका इंतज़ार कर रही थी। वक्त 6:30, 7 बज गए। पहले कभी इतनी देर नहीं हुई थी। आसमान अंधेरा हो गया था। तभी अचानक स्टेशन लोगों की भीड़ से भर गया। हर तरफ से सिर्फ रोने की आवाज़ और दुर्गापुर जाने की चीख। उस शाम स्टेशन एक शमशान बन गया था। खबर थी कि फैक्ट्री में आग लग गई है और बहुत से कर्मी जलकर राख हो गए हैं। उस दिन से हर रोज मैं यहाँ उनका इंतजार करती हूँ। मैंने उस लड़के से कई बार पूछा था। उसने कहा उसे कुछ नहीं पता, उनके नाम का कोई वहाँ काम नहीं करता। अरे ये कैसे हो सकता है, घर पर उनका अपॉइंटमेंट लेटर अब भी रखा है। पहले तो हमेशा बताकर जाया करते थे, पता नहीं उस दिन क्यों भूल गए। आपको क्या लगता है कहाँ गए होंगे? अरे देखिए आपकी ट्रेन आ गई, जरा सुनिए ना, आप उसी रास्ते पर जा रहे हैं। अगर वो आपको मिलें तो उनसे कहिएगा कि मैं स्टेशन पर ही उनका इंतजार कर रही हूँ। तो दोस्तों ये थी कल्लोल मुखर्जी की लिखी कहानी मुंतजिर, जो अभी अभी आपने सुनी। और उम्मीद है ये कहानी अभी भी आपके साथ है। इस कहानी ने जो इमोशंस आपके अंदर जगाए होंगे वो अभी ताज़ा हैं, और इन ताज़ा इमोशंस के ज़रिए इनकी मौजूदगी में ही अगर हम इस कहानी के कहने वाले से बात कर लें तो कितना अच्छा होगा। कल्लोल मुखर्जी खुद मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि ये कहानी क्या कहती है। कल्लोल आपका स्वागत है SBS हिंदी पर।
शुक्रिया सर।
जी तो अभी अभी हमने आपकी कहानी पढ़ी मुंतज़िर, आप उस कहानी को कैसे कह गए, वो कहानी कब कही गई, किस माहौल में कही गई, थोड़ा सा बताएंगे?
देखिए मैं कहानी का कोई जो रूट होता है, मेरी कहानियों का जो रूट होता है वो कोई एक इवेंट नहीं होता, वो मैं नंबर ऑफ इवेंट्स देखने के बाद वो उसमें से कुछ ना कुछ निकालता हूँ मैं और फिर उससे कहानी कहता हूँ। तो मुझे याद आता है कि जब मैं मुंतजर लिख रहा था, तब मैं मुंतजर लिखने के पहले मैं कलकत्ता में था, मेरा होम टाउन कलकत्ता है, दुर्गापुर है, उस तरफ ही ट्रैवल किया था। तो वहाँ पर मैं ट्रेन में था और मैं ऐसे लोगों को देख रहा था, और आप सबसे बेहतरीन बात ट्रेनों की ये होती है कि वहाँ पे हर इंसान एक कहानी लेकर चल रहा होता है। तो अगर आप गौर करेंगे तो आपको कहानियाँ मिल जाती हैं। तो मैं स्टेशन में वेट कर रहा था अपनी ट्रेन का, तो मैंने देखा कि कुछ औरतें ऐसे बैठी हुई हैं एकदम शांति से, ऐसा लगा मुझे कि किसी का इंतजार कर रही हैं। और फिर मुझे ये कहानी मेरे दिमाग में आई, क्योंकि दुर्गापुर का एक इतिहास भी है कि वहाँ पे दुर्गापुर स्टील प्लांट है और उसमें आग लगी थी एक बार। तो मुझे ये सारी चीजें दिमाग में थी। तो मैं जब ट्रेन में वापस दुर्गापुर से हावड़ा आ रहा था तब मेरे दिमाग में ये कहानी मैंने गढ़ी।
अच्छा ये एकमात्र कहानी नहीं है जो ट्रेन के इर्द गिर्द घूमती है। मैंने एक और कहानी आपकी पढ़ी, वो भी ट्रेन पर थी, ट्रेन के माहौल में थी। क्या कुछ विशेष लगाव है ट्रेन से?
हाँ जी, क्योंकि मेरा जो बचपन है, बचपन से अब तक मेरी जिंदगी ऐसा है कि मैं हमेशा ट्रेन के आसपास ही रहा हूँ। ठीक है, मतलब बचपन से, और मेरे पिताजी जो है वो रेलवे में ही काम करते हैं, तो हम बचपन से रेलवे आसपास ही घर में रहे हैं। तो अभी भी मैं जैसे मैं अभी रोहतक में रहता हूँ, तो मेरे घर के पास से ही ट्रेन गुजरती है। तो मुझे वो ट्रेन की आवाज से एसोसिएशन है, मुझे ट्रेन से एसोसिएशन है। क्योंकि आप ट्रेन देखेंगे ना, आप ट्रेन एक हमारी जिंदगी का एक मेटाफर ही है। मतलब आप एक स्टेशन से निकलते हैं, एक सोर्स स्टेशन से आप निकलते हैं और एक डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, बीच में काफी सारे प्लेटफॉर्म आते हैं। तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो आपकी जिंदगी के मोमेंट्स हैं, वो उसको आप जीते हैं। और वो प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत कम शॉर्ट लिफ्ट होते हैं। मतलब जैसे कि ट्रेन स्टेशन में रुकती है 2-3-5 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन उस स्टेशन से उस स्टेशन पर पहुंचने का जो सफर, लंबा सफर है उस, वो काफी लंबा फासला होता है। तो मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी भी एक ट्रेन की तरह है और हम ट्रेन की तरह ही जीते हैं, तो इसीलिए ट्रेन के साथ बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन है मुझे। और मैं ट्रेन, रेलवे स्टेशन और ये सारी जगह पे मुझे बहुत कहानियां मिल जाती हैं।
एक बात और जो मैंने, जिस पर मेरा ध्यान गया कि आपकी कहानियों में डायलॉग्स बहुत हैं, वो जैसे ये कहानी है मुंतजिर, इसमें तो खैर गजब ही है कि एक ही व्यक्ति को हम सुन पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं बातचीत में कुछ टूटता नहीं है, हमें पूरी बातचीत सुनाई देती है, समझ में आती है। पर वैसे भी जो आपकी कहानियाँ, मैंने अन्य कहानियाँ भी पढ़ी हैं, उसमें बातचीत में कहानी बहती है, कहानी बढ़ती है, और ये सोच समझ कर किया गया कुछ प्रयोग है या नेचुरली ऐसे होता है?
देखिए, ये वाली कहानी में तो ये जो प्रयोग था ये मैंने जानबूझ के किया था कि मैं सामने वाले की कॉन्वर्सेशन नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मेरा पाठक है वो खुद उस कुर्सी में बैठे, उसके बाजू में, इसीलिए मैं किसी का रिप्लाई नहीं सुना रहा था।
हालांकि वो पूरी,
लेकिन फिर भी
बात पहुंचती है, ऐसा तो नहीं है।
कहीं ना कहीं मतलब इस कहानी में तो ये डेलिबरेट था मेरी तरफ से कि मतलब मैं ये चीज करूंगा। बाकी मैं कहानियों में, कुछ कहानियां ऐसी हैं जहाँ पे मैं मतलब सीन को ज्यादा डिस्क्राइब करता हूँ, सीन के थ्रू कहानी कहना पसंद करता हूँ। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो डायलॉग ड्रिवन ही होती हैं, जैसे कि दो लोग बैठे हैं समुंदर के किनारे तो वो बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पे आप ज्यादा सीन बता नहीं सकते, वहां पे आपको उन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन ही बतानी पड़ेगी। आप सीन थोड़ा बता सकते हैं कि सूरज ढल रहा है और अब सूरज ढल गया है ना, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, जो कि वो चीजें आपकी कहानी को मतलब अपलिफ्ट करने में मदद करेगी और एनहांस करेगी उसका इमोशन। लेकिन कहानी का इमोशन बेसिकली उस कहानी में बेसिकली उन डायलॉग्स के थ्रू ही निकल के आना है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी मैंने लिखी हैं जो कि आप सीन के थ्रू ही बता सकते हैं कि मतलब सीन के थ्रू ही इमोशन निकलता है, डायलॉग उसमें कम होते हैं।
आपके लिए कहानी है क्या, कर लो, और जो कहानी है वो क्या है, क्या कहने का माध्यम है और वो क्या करती है, क्या एक घटना ही कहानी है?
हाँ, कहानी मेरे लिए बेसिकली, कहानी अगर आप मेरी बात करें, अगर मेरे कमर्शियल काम को छोड़ के मैं बात करूं, तो मैं, मेरे लिए कहानी एक एक्सप्रेशन है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसके थ्रू मैं उन लोगों की बात एक्सप्रेस करना चाहता हूँ जिनके पास एक्सप्रेशन का जरिया नहीं है, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो सारी बातें कहूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ जो लोग अभी तक कभी फील नहीं किए। क्योंकि देखिए, ऐसा जरूर, ऐसा आपके साथ और हमारे सबके साथ ही ऐसा होता है कि हम अक्सर रास्ते में चलते हैं, हमें हजारों लोग दिखते हैं, लेकिन कभी हम रुक के ये नहीं सोचते कि इसकी ये क्या सोच रहा होगा इस वक्त। कोई इंसान कहीं से जा रहा है, आपको क्रॉस करके गया, आप ये नहीं सोचोगे कि ये इंसान क्या सोच रहा होगा, क्या कहाँ जा रहा होगा, क्यों जा रहा होगा, है ना। लेकिन जब आप उसी किरदार को आप लिख देते हैं ना, तो इंसान उसको पढ़ता है, उसको जानता है, उसको जानने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ उसके ऐसे और भी लोग हैं उनको भी समझता है। जैसे कि मैं मुंतजिर की बात करूँ ना, तो मुंतजिर में मैंने रेफरेंसिंग करी है, मतलब फोर शेडोइंग कहते हैं इसे, फोर शेडोइंग करी है। वो पहले बताती है कि ये आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के उस पार वो जो लड़का खड़ा है, वो भी वो उधर जा रहा है, उधर काम करता है, वो जो लड़की खड़ी है दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म में, वो उधर स्कूल में काम करती है। लेकिन आप जब लेटर ऑन स्टोरी में आप सुनते हैं तो उसकी भी कहानी कहीं ना कहीं वैसी ही
वही
होती
है।
हाँ, इनफैक्ट वही है। ये तो सबसे पहली बात, तो मैंने ये चीज इसीलिए किया, फोरशैडोइंग इसीलिए किया क्योंकि मैं एक यूनिवर्सल टच देना चाहता था, क्योंकि उस टाउन में मोस्टली लोग दुर्गापुर स्टील प्लांट में काम करते हैं और मोस्टली लोगों की कहानी काइंड ऑफ सिमिलर ही है। मेरा ये भी मानना है कि अक्सर ना हम, हमारी आइडेंटिटीज अलग होती हैं लेकिन हम एक तरीके की जिंदगी लीड करते हैं।
बहुत तो सुंदर बात कही आपने कि भले ही हम अलग अलग हों लेकिन जिंदगी अक्सर एक ही तरह की लीड कर रहे होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कल्लोल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कहानी सुनकर, और बहुत सी कहानियों का इंतजार रहेगा हमें, हम मुंतजिर हैं। बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया, शुक्रिया आपका।
आप जुड़े हैं SBS हिंदी रेडियो के साथ। लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।